ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट 36 और 37 इंग्लिश हिंदी। विमोच्य ताम इमाम बांधाम अवेद्या कामा कर्माजम सर्वा भूता सूरज शांता मैत्रा करुणा आत्मवान विमोचयन्ताम् इमां बन्धान् अवेद्या काम कर्मयाम् सर्वभूता सुरचन्तो मैत्रा करुणा आत्मवान् विमोचयन्ताम् इमां बन्धान् अवेद्या काम कर्मजम् सर्वभूता सुरचन्तो मैत्रा करुणा आत्मवान् विमोचयन्ताम् इमां बन्धान् अवेद्या काम कर्मजम् सर्वभूता सुरशान्तो मैत्रा करुणा आत्मवान् माताजीज शब्द
विमोचा छूटकर ताम उससे इमान यह बंधन बंधन अविद्या अविद्या के कारण काम कामेक्षाओं के कारण कर्मजन कार्यों से उत्पन्न सर्वभूत सारे जीवों का सुवेद मित्र शांत अत्यंत शांत मैत्र मैत्रीपूर्ण करुणा दयालु आत्मवान स्वरूप सिद्ध। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शरीर से अपनी पहचान करने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है और इस तरह वो अनेक प्रकार के पवित्र तथा पवित्र कार्यों में अपने को लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामेक्षाओं को त्याग दूंगा और इस तरह मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु समस्त जीवों का सुभाषी मित्र तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखने वाला बनूंगा।
अनुवाद लाइए।
शरीर से अपनी पहचान करने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है और इस तरह वह अनेक प्रकार के पवित्र तथा पवित्र कार्यों में अपने को लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतित आत्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामेक्षाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु समस्त जीवों का सुभाषी मित्र तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखने वाला बनूंगा। तत्पर समस्त कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए संकल्प का यही मानदंड होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को माया के पास से अपने को छुड़ा लेना चाहिए और ऐसे पासों से कष्ट पा रहे अन्य सारे जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। कृष्ण भावना मृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए है अपितु अन्यों के लिए भी है। कृष्ण भावना मृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने मोक्ष में ही रुचि रखता है वह कृष्ण भावना मृत में उतना बढ़ा चढ़ा नहीं होता जितना कि अन्यों के प्रति दया अनुभव करने वाला होता है। इसीलिए वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करता है। ऐसा बढ़ा चढ़ा भक्त कभी नीचे नहीं गिरता क्योंकि कृष्ण उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करेंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। हर व्यक्ति माया के हाथों से खिलौने जैसा है। हर व्यक्ति माया के हाथों में खिलौनों जैसा है और वह उसे जिस तरह घुमाती है वह कार्य करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को तथा अन्यों को इसे छुड़ाने के लिए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे।
ओम ज्ञानमिदमिदस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेसम सावितामेन स्वयं रूपाकरं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव श्रीरूपां सग्राजतां सहगना रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णाय श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना दलिता श्रीविशाखान्वितं सा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंता राधा कंतन तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुति देवी वाचा कल्पातव्य कृपा सिंधु भय वच हरिता पवनेभ्यो जय श्री कृष्ण। विमोच्यताम इमां बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूता सुरा शांतो मैत्र करुणा आत्मवान। तो इन दो श्लोकों का उच्चारण आज ही मिल कर रहे हैं और जैसे आपने कल पढ़ा और पिछले श्लोकों में सुना, आज मिल समझ गया है कि किस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हुआ, क्योंकि वो इस वैश्या की संगत में आ गया और वैश्या की संगत में रहकर उन्हें हर प्रकार का कल काम करना पड़ा। पर उद्धार कैसे हुआ? भक्तों की संगत से। जब विष्णु दूत वहां पहुंचे, उन्होंने रोका यामदूतों को, आजमल की आत्मा को नरक में ले जाने से, तो विष्णु दूत की संगत में आकर आजमल के मन में फिर से आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हुई। तो आज के श्लोक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हो रही है। आज असल में ये दो श्लोक हैं एक साथ। आजमल कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शारीरिक पहचान के कारण इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ गए। भागवत गीता का उपदेश सबसे महत्वपूर्ण है और गीता का उपदेश आरंभ होता है दूसरे अध्याय में, जबकि भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि आत्मा और देह में क्या अंतर है। आज हम अज्ञानता में हैं। अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं ये देह हमारा असली शरीर है, और जब आप केवल देह के विषय में चिंता करोगे तो फिर आप इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ोगे। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि हम ये देह नहीं है। न आत्मा के विषय में भगवान ने क्या कहा, न जायते मृते वा कदाचन। आत्मा का न कभी जन्म होता है न ही मृत्यु। आत्मा केवल अलग अलग प्रकार के देह को स्वीकार करती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जैसे हम हमारे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक देह को त्याग कर अगला देह स्वीकार करती है। और किस प्रकार का देह प्राप्त होगा यह निर्भर किया जाता है हमारे कार्यों के द्वारा। तो शारीरिक पहचान का अर्थ है ये सोचना कि शरीर ही हमारा असली स्वरूप है और शरीर के सुख के पीछे मोहित हो जाना, दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ जाना। शास्त्र में कहा गया है कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य से हमें बचना चाहिए। भगवान ऋषभदेव की शिक्षा हमें भगवतम के पांचवें स्कंद में प्राप्त होती है। भगवान ऋषभदेव स्वयं भगवान हैं और उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, नूनम प्रमता कुरुते विकर्म। जो व्यक्ति विकर्म कार्य करता है, विकर्म कार्य का अर्थ है कार्य शास्त्र के विपरीत। तो जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो मूर्ख है। प्रमता, प्रमता का अर्थ है मूर्ख, वो मूर्ख है। तो आप पूछोगे क्यों, क्यों है मूर्ख? ऋषभदेव जी कहते हैं, क्योंकि आज जो ध्येय उसे प्राप्त हुआ है वो केवल उसे कष्ट दे रहा है, और जब तक हम शास्त्र के विपरीत कार्य करेंगे आपको ध्येय प्राप्त होते जाएंगे जो केवल आपको कष्ट देंगे। चाहे आप धनी व्यक्ति का के खानदान में जन्म लो या गरीब, 7 प्रकार के कष्टों से अब आपको नहीं बचा सकते। इसलिए शास्त्र में बार बार इस विषय की चर्चा की जा रही है कि हमें इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए। जब तक आप इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़े रहोगे, जब तक आप इस भौतिक संसार में 84 लाख योनियों में गुजरते रहोगे और हर योनि में क्या है, केवल कष्ट ही कष्ट। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अभी यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा भगवान की सेवा में उपयोग करो। भगवान ऋषभ देवी कहते हैं पांचवें स्कंद में, नाहम देह देह बाजम लोके, हे मेरे प्रिय पुत्र पशुओं के समान जीवन को मत बिताओ। तो क्या करो, तपो देवियम पुत्र का ये न सत्वम, ये मनुष्य देह का उपयोग करो। किस लिए? तपस्या का पालन करने के लिए, भगवान की खुशी के कार्य के लिए करने के लिए। तो यहां आज मिल कह रहे हैं क्योंकि मैंने अपने शरीर से पहचान रखी। आप कहोगे जो आध्यात्मिकवादी हैं वो क्या देह की चिंता नहीं करते? हम करते हैं। देह को अगर कोई रोग पीड़ा हो तो तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। चिन्ह के पंडित ने कहा तीन तीन चीजों का इलाज एकदम करना चाहिए। क्या? अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करो, अगर आपने कर्जा देना है तो उसको चुकाओ, और अगर आग है तो आग को बुझाओ एकदम, नहीं तो आग बढ़ते जाएगी। तो आप कहोगे तो आप आध्यात्मिकवादी भी देह की देखभाल करते हो ना? हम करते हैं, पर हम इस भाव उद्देश्य से करते हैं कि देह के असली मालिक हैं परम भगवान, और अगर ये देह ठीक रहेगा तो आप इसे भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हो। पर अगर हम ये सोचें कि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए क्योंकि हमें अधिक इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो ये भूल है। जैसे आज के वातावरण में प्रजा के मन में काफी जागृति हो गई है अच्छे स्वास्थ्य के विषय में, इसलिए आप देखते हो कोने कोने में जिम्नेजियम, बॉडी बिल्डिंग, और पार्क में जाओ तो सब घूमने आते हैं। तो उसका कारण क्या है? उन्हें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। पर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए किस उद्देश्य के साथ? कि हमें इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो। इस उद्देश्य के साथ नहीं कि अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो हम भगवान की सेवा करेंगे या कीर्तन में नाचेंगे, नहीं। इस उद्देश्य के साथ कमजोर स्वास्थ्य से इंद्रिय तृप्ति की सुविधा भी रुक जाती है। अच्छा स्वास्थ्य हो तो इंद्रिय तृप्ति भी कर सकते हो। पर भक्तों का क्या भाव है? हम स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं क्योंकि यह ध्येय है भगवान की सेवा के लिए, अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। पर अज्ञानता में लोग क्या सोचते हैं, ये ध्येय ही सब कुछ है और मृत्यु के साथ हर कार्य समाप्त हो जाता है, मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त होता है। तो क्या है भौतिकवादियों का नियम? खाओ पियो जियो, ठीक है नहीं? खाओ भेदभाव बिना, पियो और जियो, क्योंकि भविष्य का ज्ञान ही नहीं उनके पास। इस विषय का ज्ञान नहीं कि आत्मा सनातन है। केवल थोड़े समय के लिए हमने ये पोशाक ग्रहण किया है और समय के साथ ये भी नष्ट हो जाएगा। ये भौतिक ध्येय 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है। बर्थ, जन्म लेता है, ग्रोथ, फिर उगता है, मेंटेनेंस, फिर मेंटेन करता है, फिर बूढ़ा होने लगता है, तकलीफ देता है, फिर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भौतिक ध्येय सदा कष्ट कष्ट हमें देता है। तो आज ही मैं स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि अज्ञानता में आ गए। अज्ञानता में कैसे आ गए? क्योंकि वो गलत संगत में आ गए। गलत संगत रखोगे तो गलत भाव आएंगे, अच्छी संगत रखोगे तो अच्छे विचार आएंगे। भौतिक वातावरण में भी आपने अनुभव किया होगा, अगर आप बुरी संगत में होते हो माँ बाप चिंता करते हैं, पर अच्छी संगत में रहते हो तो अच्छा भाव रहता है। भक्तों की संगत में रहोगे तो आध्यात्मिक जागृति सदा रहेगी, और भौतिकवादियों की संगत में रहोगे तो उसी प्रकार की बुद्धि आपको भी प्राप्त हो जाएगी। तो यहां आज मिल कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने ध्येय से ध्येय की पहचान रखी, मैं अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ गया, और इसके कारण मैंने कई पुण्यात्मक पवित्र अपवित्र कार्यों में जुड़ गए। भौतिक संसार में अगर हम कोई अच्छा कार्य भी करें, हम करते हैं कि इस भावना से किसके बदले में हमें कुछ लाभ मिले। हम जाते हैं तीर्थ के स्थानों में, हम जाते हैं दान देते हैं, पर हमारा भाव क्या रहता है कि इसके बदले में हमें कुछ लाभ प्राप्त हो। 10 रुपए चढ़ाएंगे, सोचेंगे इसके बदले में हमें 1000 रुपए मिलना चाहिए। हम तीर्थ के स्थानों में जाते हैं इस भावना से कि हमें सुविधा प्राप्त हो इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक सुख के लिए। पर जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं उनके मन में यही भाव रहता है क्या कि हम भगवत सेवा करें, चाहे कितनी भी कठिन स्थिति में हो हम सेवा से जुड़ा नहीं हो। तो जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के भाव रखेंगे, जब तक आप इस बंधन में रहोगे, जन्म मृत्यु के बंधन, असली विजय है जब आप इस बंधन से मुक्त हो जाओ। जब तक आप शुद्ध भक्ति को नहीं अपनाओगे, आप इस बंधन से मुक्त नहीं होना चाहिए हो सकते। तो आज भी क्या कह रहे हैं, अब वो दृढ़ होकर कह रहे हैं कि मैंने इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है। अगर आप भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो क्या है उपाय, भगवान की शरण स्वीकार करो। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, देवी एष गुणमाय मम माया दुरतया, इस माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है, पर अगर कोई व्यक्ति मेरे शरणागत होता है, मेरे शरणागत होने का अर्थ क्या, भगवान की शिक्षा आदेश का पालन करना। भगवान का आदेश क्या है, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शरणं, सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान का आदेश है भक्ति को स्वीकार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया। ये दो भाई एक समय उस समय के सबसे धनी राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर पहले रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी और फिर उनके भाई ने, तो महाप्रभु ने दोनों भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। रूप गोस्वामी को प्रयाग में शिक्षा देते हुए कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मीत कौन भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति लता बीज, भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज प्राप्त होने का अर्थ है भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त करना। तो साधारण स्थिति में बीज कैसे उगता है, बीज उगता है जब आप उसे क्या पिलाओ, पानी पिलाओ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये भक्ति का बीज उगेगा अगर आप क्या करोगे, शरणम और कीर्तनम। तो भगवान की शरण लेने का अर्थ है भगवान की शिक्षा का पालन करना, और भगवान शास्त्रों का क्या है निर्णय, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्ते व नस्ते व नस्ते वे, हरे के नाम हरे के नाम हरे के नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भक्ति कभी जुगेगा अगर आप ये हरि नाम का उच्चारण करोगे। प्रभुपाद जी पश्चिम देशों में गए थे 40 रुपए के साथ पर भगवान का असली संदेश लेकर, और प्रभुपाद जी ने कैसे लोगों को प्रभावित किया सारे विश्व में, ये हरि नाम के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम, हरि नाम के उच्चारण से चैत्य दर्पण मार्जनम, हृदय की मैल दूर होती है। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए और ये भक्ति कभी जोगेगा, पर हमें सावधान रहना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बचें, जैसे कि हम मंदिरों में रोज सुबह 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं। उनमें सबसे पहला अपराध क्या है? उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है कहां, भगवान की सेवा पे। तो ये भक्ति का बीज उगेगा अगर आप ध्यान से जाप करोगे। और चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया। एक, साधु संगत, हमें साधु संगत पे रहना चाहिए सदा। नाम कीर्तन है, नाम का उच्चारण, भागवतम श्रवणम, ध्यान से भागवतम को सुनो, धाम में रहो या अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण रखो, और मूर्ति को आदर दो, मूर्ति की पूजा करो आदर के साथ। तो राजमिल ने निर्णय कर लिया कि अब मैंने इस माया के प्रभाव से अपने आप को जरूर बचाना है, मुझे इस बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, इसी प्रकार का निर्णय हम सब का होना चाहिए। जब आप भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो, हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो हमने भक्ति को नहीं त्यागना। ये नहीं कि अगर कुछ कठिनाई हो या कोई ऐसी स्थिति हो जो हमें अच्छा नहीं लगे तो हम सोचें भक्ति को त्याग दें। हमें दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने हमें बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है श्री उपदेशामृत नाम के ग्रंथ में। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सतो सदवी भक्ति प्रसिद्धि। अगर आप चाहते हो कि भक्ति के मार्ग में अब आगे बढ़ो तो हमें इन गुणों को अनुकूल करना चाहिए। क्या? उत्साहित, उत्साह, हमें बड़े उत्साह के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। आखिर अब किसकी सेवा में जुड़े हो? परम भगवान की सेवा में। आप भौतिक वादियों को देखते हो, भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने उत्साहित होते हैं, तो जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो हमें अधिक उत्साहित होना चाहिए। फिर निश्चय दृढ़ होकर दृढ़ होकर भगवान की भक्ति में जुड़ो। इस विषय में रूप गोस्वामी हमें बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं एक और ग्रंथ में जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति का बीज उगेगा शरणम कीर्तनम के माध्यम से। उसके द्वारा जब आप भक्ति की विधियों का पालन करो, इसे कहते हैं भजन क्रिया। जब आप भजन क्रिया करोगे तो फिर हृदय में निष्ठा आएगी। कई बार भक्त पूछते हैं ये निष्ठा का भाव कैसे प्रकट किया जाए, निष्ठा का भाव कैसे अनुकूल किया जाए। तो ये निष्ठा का भाव अनुकूल होगा, केवल अगर आप भजन क्रिया का पालन करोगे। अगर भजन क्रिया का पालन नहीं करोगे तो निष्ठा संभव है? नहीं संभव है। निष्ठा संभव है अगर आप भजन क्रिया का पालन करो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार के निष्ठा का भाव आज मिल प्रकट कर रहे हैं इन श्लोकों में, उसी प्रकार का निष्ठा का भाव हम सब में होना चाहिए। और ये निष्ठा बढ़ेगी जितने ध्यान से आप शरणम कीर्तनम का लाभ उठाओगे। और अगर शरणम कीर्तनम का लाभ नहीं उठाओगे तो फिर ये निष्ठा नहीं बढ़ेगी। और फिर एक दिन उत्साह रहेगा, अगले दिन उत्साह नहीं रहेगा। तो आज मिल कह रहे हैं कि अब मैंने इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है, और ये भौतिक बंधन से मुक्त होऊंगा भक्ति की विधियों का पालन करके। और मुझे ये भौतिक आकर्षण से बचना है। भौतिक आकर्षण से कैसे बचोगे? अगर आप भगवान की शरण लोगे। जैसे कि सर्दी के मौसम में आप अपने आप को कैसे बचाते हो? गर्म कपड़े पहन के। गर्मी के मौसम में आप कैसे बचाते हो गर्मी से? पंखों का उपयोग करके। इसी प्रकार भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा आप अपने आप को माया के प्रभाव से बचा सकोगे। आगे आजमिल कहते हैं, अब मैं अत्यंत दयालु बन जाऊंगा और पूरे समाज का मित्र बन जाऊंगा और सदा कृष्ण भावनामृत भाव में रहूंगा। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय की चर्चा करते हैं और कहते हैं ये होना चाहिए सबका भाव। सबसे पहले क्या? दयालु। भगवान कपिला देव ने तीसरे स्कंद में साधुओं का के लक्षणों का वर्णन किया है। और सबसे पहले भगवान कपिला देव क्या कहते हैं? तितिक्षवा करुणिका हा। भाग को एक तरफ से सहनशील होना चाहिए। बहुत एक जीवन में आदर अपमान सुख दुख ये सब हमें अनुभव करना पड़ता है। साथ में करुणिका। करुणिका का क्या अर्थ है? अत्यंत दयालु। तो भौतिकवादियों का एक लक्ष्य है, एक भाव है। कई भौतिकवादी सोचते हैं दया, हम दान दे देंगे, पाठशाला खोल देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे। आप हॉस्पिटल खोल दो, पाठशाला खोल दो, पर अगर आप लोगों के हृदय में जो पाप की इच्छा है उसको दूर नहीं करोगे तो आप लोगों का सहयोग नहीं दे रहे। इसलिए भक्तों के मन में ये भाव है कि असली दया क्या है? क्या है असली दया? लोगों को भगवान का ज्ञान देना, लोगों को ये शिक्षा देना जिसके द्वारा वो भगवान के शरणागत हो सके। जैसे कि प्रचार की जो सेवा है, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सब प्रकार के सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी सेवा है? प्रचार की सेवा। इसीलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? और उससे ज्यादा प्रिय ना कर हुआ है ना ना होगा। तो यही भाव इस श्लोक में भी प्रकट किया जा रहा है। आजमेल होश में आ गए हैं, बुरी संगत से बच गए हैं, और अब उन्होंने ये निर्णय किया है कि मुझे हर स्थिति में कृष्ण भावना भावित होना है और मुझे दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक है गोष्ठानंदी, एक है भजनानंदी। जो भजनानंदी भक्त है वो केवल अपने उद्धार का ही सोचता है, उसे ये चिंता नहीं कि दूसरों का उद्धार हो या नहीं। मेरा तो उद्धार हो रहा है, दूसरों को नरक में जाने लग गए, हमें क्या, हम तो भजन कर रहे हैं। फिर दूसरे हैं गोष्ठानंदी। जो गोष्ठानंदी भक्त है अपने स्वार्थ का सोचता है, वो दूसरों का भी, ये नहीं कि अपने स्वार्थ का नहीं सोचता, ये नहीं कि वो कहे हाँ हम तो प्रचार करेंगे पर हमारी साधना कमजोर होने दो, नहीं, नहीं। अपने स्वार्थ का भी सोचता है, इसलिए अच्छी साधना रखता है, ध्यानपूर्वक जाप करता है और साथ में भगवान का प्रचार भी करता है। तो हम वैष्णव जो इस्कॉन के हैं, हमारा प्रयास है गोष्ठानंदी भक्त बनना, भजनानंदी नहीं। भजनानंदा केवल भजन करेगा और प्रचार में उनकी कोई रुचि नहीं। जो गोष्ठानंदी भक्त हैं वो भजन भी करेंगे और प्रचार भी करेंगे। प्रचार क्यों करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि परम भगवान की हार्दिक इच्छा है सारे बदजीव कहां लौटें, उनके दिव्य धाम में लौटें। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रचार के सेवा पर इतना बल दिया। रोज सुबह आप लोग प्रभुपाद जी के पत्रों को सुनते हो जिसमें उन्होंने प्रचार और खास करके ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया। जैसे इस समय हमारे भक्त ग्रंथों के मैराथन में जुड़े हैं। क्यों? ये प्रचार की सेवा क्यों की जा रही है? लोग गीता पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए कोई पढ़ेगा नहीं। लोग पढ़ेंगे, बेशक कम संख्या के लोग पढ़ें, तो लोग पढ़ेंगे और इसके द्वारा अपना जीवन सुधारेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इन ग्रंथों का अनुवाद किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया जाओ प्रचार करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को क्या कहा? जाले दाखो ताहे कहो कृष्ण उदय। नित्यानंदा हरिदास ठाकुर को क्या कहा? घर घर जाओ और लोगों को हाथ जोड़कर एक ही संदेश दो, क्या? बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, करो कृष्ण से कृष्णा का नाम लो, कृष्णा का भजन करो, कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ। तो वैष्णव भक्त जो है उसको कहा जाता है परा दुख दुखी। जब वो देखता है कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में जुड़ा है तो वो उसकी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करता है। कैसे? प्रचार के द्वारा। तो भक्त ग्रंथ, भक्त भगवत, ग्रंथ भगवत। भक्त भी प्रचार करता है और ग्रंथों के माध्यम से लोगों की आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। सारे विश्व में ये अनुभव है कि इन ग्रंथों के प्रभाव से लोग गलत काम त्यागते हैं, अच्छे कामों को स्वीकार करते हैं। तो आज ही मिल दृढ़ होकर ये निर्णय कर लिया है उन्होंने कि मुझे कृष्ण भावना भावित होना है और हर स्थिति में भगवान की सेवा में जुड़े रहना है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आप को माया के बंधन से बचाता है। कैसे? कृष्ण भगवान की शिक्षा की शरण लेकर। तो आज मिल कह रहे हैं मैं अभी दयालु बनूंगा, सबका मित्र बनूंगा। तो साधु के लक्षणों के विषय में कहा गया है सूरदा सर्व धैनम। सूरदा सर्व धैनम का क्या अर्थ है? जो भक्त है वो सबका मित्र है, शत्रु को भी अपना मित्र मानता है, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। अगर कोई कष्ट भी दे रहा है तो उसे अपना मित्र मानता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु चाहते थे कि प्रहलाद को राजनीतिक शिक्षा दी जाए, तो प्रहलाद ने कहा है, मेरे प्रिय पिता, सभी मेरे मित्र है, कोई मेरा शत्रु नहीं। यह है भक्त का भाव कि सब मेरे मित्र हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में अनेक प्रकार के भक्त हैं, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, पर सबका एक ही भाव होना चाहिए, कृष्ण सेवा। आप भागवतम के चौथे स्कंद में प्रचेतस की कथा पढ़ते हो, प्रचेतस महाराज प्रतिज्ञा परिषद के पुत्र थे और गए थे जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। उनकी तपस्या से परम भगवान बड़े प्रभावित हुए थे और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने कहा, मैं तुम भाइयों से बड़ा संतुष्ट हूं, क्यों? क्योंकि तुम सब भाइयों का एक ही लक्ष्य है, भक्ति योग। तो इसी प्रकार हम सब भक्तों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भक्ति योग, भगवान की सेवा में जुड़ना। और वो भाव रहेगा तो हर व्यक्ति शांत रहेगा और सुखी रहेगा। तो जो भाव आजमील प्रकट कर रहे हैं वो भाव हम सब में होना चाहिए और हमें माया से बचना चाहिए। माया का सदा ये प्रयास रहता है कि हमें भगवान को भुलाए। और आज के वातावरण में अनेक सुविधाएं हैं और जिनके द्वारा बड़ी सरलता से भगवान को भूल सकते हो। उदाहरण के लिए जो इंटरनेट की सुविधा है वो ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। एक रूप से इंटरनेट द्वारा आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आप इसको के कई मंदिरों मूर्तियों का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, लेक्चर सुन सकते हो इत्यादि, पर इसमें दो कमियां भी हैं। अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो फिर और गहराई से माया में जुड़ सकते हो। तो इसलिए बार बार शास्त्रों में ये उपदेश दिया जा रहा है कि हमें माया से बचना है, माया से बचना है। श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक इतनी कथाएं हैं। आजमली की कथा में भी आपने क्या देखा, आजमली की कथा में आपने देखा कि आजमली ने उस वैश्य को अपने प्रेमी के साथ देखा और इस घटना का स्मरण आरंभ कर दिया। क्योंकि उसने इस घटना का स्मरण आरंभ किया, इसका ये परिणाम हुआ कि भक्ति के मार्ग से वो जुदा हो गए और गलत कामों में जुड़ गए। तो इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदा सावधान रहना चाहिए। अगर आप मन का दुरुपयोग करोगे, मन को गलत स्थानों में बिठाओगे तो फिर आप गलत कामों में जुड़ जाओगे। और अगर मन द्वारा सदा शुद्ध विचार रखोगे, इसीलिए भगवान बार बार क्या कहते हैं, मन मनोभावा मद भक्तो मध्याजी मन नमस्कारो माँ में वाशुति सत्यम थे प्रति जन पीयूष में। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं मन को बंधु बनाओ। कल के श्लोक में आपने पढ़ा कि आजमील ने दृढ़ होकर कहा कि मैं अपने मन प्राण और इंद्रियों द्वारा केवल भगवान की सेवा करूंगा। तो अगर ये निर्णय हो हम सबका तो फिर आप भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो भक्त प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं भगवान उनको खास उनकी खास सुरक्षा करते हैं। क्योंकि जो प्रचार करते हैं वो भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। तो अगर आप भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हो तो हमें किस सेवा में जुड़ना चाहिए, प्रचार की सेवा में जुड़ना चाहे, और अगर आप थोड़ा भी प्रयास करोगे, अगर कुछ कमी भी होगी तो भगवान उसे दूर कर देंगे। तो आज के दो श्लोकों में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर हम ध्यान से श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो उसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी तो ज्यादा ज्यादा सरलता से आप माया का विरोध कर सकोगे। जैसे कि अगर किसी का अच्छा स्वास्थ्य हो तो बीमारी से जल्दी सुधर जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ध्यान से करेंगे तो फिर आप अपने आप को बिना शंका के माया के प्रभाव से बचा सकोगे। और अगर अच्छी साधना नहीं रखें, ध्यानपूर्वक जाप नहीं करें तो क्या परिणाम होगा? माया हमें अपने प्रभाव में रख सकती है। हम हैं माया के प्रभाव में, हम माया के प्रभाव से निकलने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो निकलने का उपाय क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हमें शास्त्र और महान आचार्यों की शिक्षा में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, इनका पालन करना चाहिए और फिर आप अपने आप को माया से मुक्त कर सकोगे। और माया से मुक्त करने का एक ही उपाय है, वो क्या है? वो उपाय शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, जो उपदेश आपको इस्कॉन के द्वारा प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? तो आप सब कहते हैं कि आज के श्लोक में प्रचार की सेवा पर बल दिया गया है। आज ही मैंने क्या कहा, अब मैं सफर क्या बनूंगा? दयालु। तो ये है वैष्णव का भाग का भाव, हमें दयालु बनना है। कई बार लोग भक्त कहते हैं पर वो प्रचार का उत्साह हमारे में है नहीं, वो भाव है नहीं, पर इस सेवा में इतनी शक्ति है, एक बार आप करोगे तो खुद ही वो भाव अनुकूल होगा। हमें भगवान और महान आचार्यों के उपदेश में पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर आप प्रचार करोगे तो भगवान शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, जिसके द्वारा आप इस कार्य में सफलता से आगे बढ़ सको। ओके, हरे कृष्ण। पक्का नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ओके, हरे कृष्ण।